कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
हिंदी युग्म कवि सम्मेलन के तीसरे सत्र के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं मृदुल कीर्ति अमेरिका से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दूसरे सत्र में हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए साधुवाद स्वीकारें। हिंदी युग्म कवि सम्मेलन के दूसरे सत्र की बड़ी ही स्वस्थ समीक्षा पढ़ने को मिली। एक भाई राजेश जी का कहना है कि कविता का सा स्वर कंठ पाठ अच्छा लगा, आपकी प्रस्तुति दिल को छू गई। वस्तुतः काव्य जब तक मर्म को ना छुए सार्थक नहीं माना जाता है। काव्य का जन्म मर्म से होता है और यह सजातीय मर्म को ही जाकर छूता है तो श्रोता वह कह उठता है, जैसे लहर से लहर मिल गई हो, उसे लगता है ये तो मेरा ही दर्द या आभास था, उसे तुमने कह दिया। मर्म से मर्म तक की यात्रा ही काव्य है, ये भावनाओं को भाषा देता है। आपके मर्म को छुआ है, अतः ये वैचारिक और मानसिक यात्रा अपना गंतव्य पा गई। साहित्य में मर्म को दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, एक संवेगनात्मक बिंदु तो दूसरा मर्म रहस्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मैं दोनों ही बिंदुओं को छूकर समीकरण करने का प्रयास करती हूँ। मर्म जन्म का मिल जाता तो इतने प्राण अधीर न होते, जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति में श्वासों के ये कीर न रोते। आया कहाँ कहाँ जाना है, खोया किसको क्या पाना है, क्या छोड़ूं क्या अपनाना है, कौन मेरा है बेगाना है। प्रश्नाकुल बेचैन प्राण के पीर कभी गंभीर न होते, जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति में श्वासों के ये कीर न रोते। और इनका उत्तर मिल जाता तो जन्म मरण जंजीर न होते, और मर्म जन्म का मिल जाता तो इतने प्राण अधीर न होते। पर मंजिलें और भी हैं, चलिए उन्हीं की ओर पग बढ़ाते हैं और नई मंजिलों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नई रचनाओं के भाव जगत में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हम भारत से विवेक मिश्रा जी के साथ। भारत से विवेक मिश्रा जी की रचना का शीर्षक है मेघ। छायावादी रचना धर्मिता को निभाते हुए प्रकृति के उपादानों के सहारे विनष्ट होते पर्यावरण की व्यवस्था के प्रति एक छटपटाहट है। एक भावनात्मक रचना विवेक मिश्रा जी से सुनिए। मेघ, जो बुलाते थे तुम्हें दो हाथ मेरे, नीम पीपल है नहीं अब कट गए, सूखी मेरे उर की नदियां घाटे इसके गंदगी से पट गए। साल बीते आए हो तुम, चार छींटे लाए हो तुम, एक सावन क्या करेगा कितने पतझर घट गए। बहुत ही सुंदर शब्दों में पर्यावरण के प्रति अपने दुख को भावनात्मक रूप में व्यक्त किया है। मैं आवाहन करती हूँ विवेक मिश्रा जी।
मेघ तुम बहरे हुए रूठे हुए हो पाहुने से, गांव तक आए तो हो पर हो दूर ही ठहरे हुए, फट गई में एड़ियों सी धूप में तपते हुए, घाव हैं जो नित नई एक चोट खाकर और भी गहरे हुए। एक थी बस आस तुमसे, तुम भी पीछे हट गए, जो बुलाते थे तुम्हें दो हाथ मेरे, नीम पीपल है नहीं अब कट गए, है नहीं अब कट गए। मैं तुम्हारी आस में रूं करा हूं सूखी जाऊं, पर नयन में नीर भरकर अब तुम्हें कैसे बुलाऊं, सूखी मेरे ओर की नदियां घाट इसके गंदगी से पट गए, जो बुलाते थे तुम्हें दो हाथ मेरे, नीम पीपल है नहीं अब कट गए। इस छोर से उस छोर तक में एक थी, अब मेरे ऊपर कितने आंगन कितने चूल्हे बट गए। साल बीते आए हो तुम, चार छींटे लाए हो तुम, कि साल बीते आए हो तुम, चार छींटे लाए हो तुम, एक सावन क्या करेगा यहाँ कितने पतझर घट गए, जो बुलाते थे तुम्हें दो हाथ मेरे, नीम पीपल है नहीं अब कट गए, है नहीं अब कट गए।
मे के माध्यम से विवेक मिश्रा जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। कालिदास ने भी मेघ से अपने मन की बात कही थी। काव्य जगत में मेघ सदा से ही भावनाओं का साक्षी रहा है। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए मिश्रा जी आपका धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं तो भारत से ही प्रदीप मनोरिया जी का मैं आवाहन करती हूँ। उन्होंने जीवन की सच्चाई को उकेरा है और सच पूछिए तो ऐसा ही होता है जैसा उन्होंने कहा है। चलिए प्रदीप मनोरिया जी के जीवन के मार्मिक वात्सल्य में क्षणों की अनुभूति के गलियारे में चलते हैं। आपने दोनों ही पक्षों की पीड़ा को उजागर किया है। जब भौतिकता का आवरण इतना मोटा हो जाए कि संवेदना की दस्तक भी न सुनाई दे, तब का दर्द, और जब किसी संवेदनशील संस्कारी संस्थान को माता पिता का विछोह सहना पड़े तो आहत मन की पीड़ा कैसी होती है। दोनों ही पक्षों को उजागर करना उनकी सम्यक और संतुलित दृष्टिकोण का परिचय है। हृदय केवल दो बार तड़पता है, एक जब बेटी घर छोड़े और दूसरा जब बेटा मुंह मोड़े। जब बेटा मुंह मोड़े वो मर्मांतक पीड़ा, प्रदीप मनोरिया जी के शब्दों में, संबंधों के दोनों पक्षों को उजागर करती उनकी दो कविताएं। मनोरिया जी मैं आपका आवाहन करती हूँ।
दोस्तों, आज व्यक्ति पैसे की अंधी दौड़ में कितना आगे निकल गया कि सारे रिश्ते नाते खून के संबंध भी सब बेमानी हो गए। इस विषय को, इस स्थिति को मैंने कविता के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। आशा है आप पसंद करेंगे। प्रस्तुत है, एक मध्यम वर्गीय शिक्षक बाप ने अपनी कमजोर होती निगाहों में सपना देखा, बदलनी चाहिए अपने बेटे के भविष्य की रेखा। पुराने कपड़े और कम खाने से गुजारा करते हुए बेटे को देखा कक्षा दर कक्षा पढ़ते हुए, सुखद भविष्य का दिखने लगा आकार, सपना होने लगा साकार। उच्च और उच्चतर शिक्षा बेटे को दिलाई, बेटे ने विदेश में जाकर नौकरी पाई। इधर बाप सपने पर सपने सजाता रहा, बेटा विदेश से फुनियाता रहा। शिक्षक बाप नौकरी से रिटायर हो गया, उधर फोन आने का सिलसिला कम हो गया। अचानक बूढ़ा बाप पड़ गया बीमार, माँ ने बेटे को बुलाने की मनहार, तो बेटा बोला छुट्टी मिलना है मुश्किल, मैं हूँ यहाँ पर आपके पास है मेरा दिल। कंप्यूटर खरीद लो, कैमरे से चैटिंग करते हैं, विज्ञान की तकनीक है, ऐसे ही हम मिल लेते हैं। बीमार बाप की एक दिन छूट गई सांस, माँ को थी बेटे के आने की आस। माँ बोली कि तू दूर था, अचानक आने को मजबूर था, तो पड़ोसियों से करवा दिया क्रिया कर्म, अब तो आ जाओ, फूल विसर्जित करके निभाओ अपना पुत्र धर्म। बेटा बन चुका था विलायती, समय था उसका बहुत कीमती। बोला माँ इधर बहुत काम है और छुट्टी मुझे हराम है, सिर्फ राख लेने के लिए इतनी दूर आऊं, लाख रुपए टिकट में और काम छोड़कर लाखों कमाऊं। माँ तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए, जिसमें हो लाभ वही करना चाहिए। कुरियर वाला है इस काम में होशियार, मुश्किल से लेगा रुपए 500 या 1000। आप तो पैक करके पिताजी की राख रख लेना, कुरियर को फोन करता हूँ कि उधर से ले लेना। राख आते ही यहाँ सिर मुंडवाऊंगा और यहाँ भी बहुत नदियाँ हैं, वही विसर्जित कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, इन रिश्तों का, इन संबंधों का एक उजला पक्ष भी है, उसको भी मैंने चित्रित करने का प्रयास किया है। कृपया ध्यान दें, कविता का शीर्षक है पिताजी। अपनों के विछोह से बंधे जिनके मोह से, उनके अवसान से जीव के प्रयाण से, दुख की गहराई है याद बहुत आई है। अपनों के विछोह से बंधे जिनके मोह से, उनके अवसान से जीव के प्रयाण से, दुख की गहराई है याद बहुत आई है, जितना मैं भुलाता हूँ भूल नहीं पाता हूँ, जितना मैं भुलाता हूँ भूल नहीं पाता हूँ। मुझ पे उनका साया था, हाथों में मुझे खिलाया था, धूप में कुमलाता हूँ सोच नहीं पाता हूँ, कैसे अब जी पाऊंगा, नहीं भुला पाऊंगा, नहीं भुला पाऊंगा, नहीं भुला पाऊंगा। अपनों के बिछोह से, बंधे जिनके मोह से, उनके अवसान से, जीव के प्रयाण से, दुख की गहराई है, याद बहुत आई है, याद बहुत आई है।
अभी प्रदीप मनोरिया जी ने जीवन के सत्यों को उजागर किया। हर सुख अंततः दुखी है, आज जो सुख भासता है कल वो नहीं होगा, उसकी स्मृतियां दुख देंगी। अतः अगर आप सजग हैं और सीखने की समझ है तो आप जिंदगी के हर पत्थर को सीढ़ी बना सकते हैं। पर मैं तो कहती हूँ, जगत माही जो जितना रूठे, समझो जग उतना ही छूटे, और कोई रूठे कछु नहीं जाई, तुम हमरे हम तुम्हरे साई। अगर इन धोखों को और ऐसे परिवेश अगर सामने आते हैं तो दुखी होने की बजाय उनको अगर आध्यात्मिकता में मोड़ दिया जाए तो भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। बटोही मोड़ दे मन की दिशाएं, मान ले कहना, बहुत इन मोह की गलियों में भटका, बन के बन जा रहा, न देखी रात आधी ताप आंधी, दिन न भिन सारा, अभी कितने जन्म मोह बीती, चाहता रहना, बटोही मोड़ दे मन की दिशाएं, मान ले कहना। और इसीलिए गीता में निष्काम कर्मयोग बताया गया कि शुभ संकल्पों के पथ दुर्गम, बीहड़ और बिराने हैं, फलदायी वृक्षों जैसे ही पत्थर तुझको खाने हैं। निष्काम कर्मयोग का भाव अगर हम ले आते हैं तो किसी से कुछ चाहना नहीं रहती, और जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। अब हम आवाहन करते हैं पौंडिचेरी से स्वर्ण ज्योत जी का। इनकी दो कविताएं हैं और इन्होंने अपने मन को टटोला है और मन में यादों का जो पुलिंदा है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करती हैं और उन क्षणों को भी याद करती हैं जिनको वो चाह कर भी नहीं भुला सकती लेकिन भूलने का प्रयास कर रही हैं। मैं आपको ले चलते हैं पांडुचेरी से स्वर्ण ज्योत जी, और आप कृपया आए और अपनी रचनाओं को पढ़ें।
नमस्कार, मैं स्वर्ण ज्योति पांडुचेरी से बोल रही हूँ। एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है मन। यादों का पुलिंदा खोलकर बैठा है मन, आज ना जाने कहां कहां उड़ा जा रहा है मन। यादों का पुलिंदा खोलकर बैठा है मन, आज ना जाने कहां कहां उड़ा जा रहा है मन। कस्तूरी कुंडली बसे पर ढूंढ रहा है मन, यूं ही मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है मन। यादों का पुलिंदा खोलकर बैठा है मन, रेतीली सूखी गरम धरा की छाती पर प्यार की ठंडी छांव ढूंढ रहा है मन। प्यासा तो ओस बूंद में तृप्त है पर भगीरथी का प्रयत्न कर रहा है मन। यादों का पुलिंदा खोलकर बैठा है मन। तराशने का दर्द सहकर ही चमक आती है, तराशने का दर्द सहकर ही चमक आती है, पर दर्द से ही भाग रहा है मन। शीशे का होता है ये नाजुक दिल, शीशे का होता है ये नाजुक दिल, कमबख्त इसे पत्थरों पर रखकर तड़प रहा है मन। यादों का पुलिंदा खोलकर बैठा है मन। जानती हूँ चांद की सच्चाई क्या है, जानती हूँ चांद की सच्चाई क्या है, पर नानी का कहना ही मानता है मन। दूर कहीं कभी मिलन की आस है, दूर कहीं कभी मिलन की आस है, यह सोच क्षितिज के पीछे दौड़ रहा है मन। यादों का पुलिंदा खोलकर बैठा है मन, आज ना जाने कहां कहां उड़ा जा रहा है मन। वो पल तुम्हारे साथ बीता एक एक क्षण प्रतिक्षण, तुम्हारे साथ बीता एक एक क्षण प्रतिक्षण, भूलना चाहकर भी मैं नहीं भुला सकती। कौन कौन से कैसे कैसे पल बीत गए जो कल, कौन कौन से कैसे कैसे पल बीत गए जो कल, भूलना चाहकर भी मैं नहीं भुला सकती। आंखों में डूबते उतरते पल, आंखों में डूबते उतरते पल, भयक्रांत सहमे सहमे पल, बाहों में सिमटे सिमटे पल, बाहों में सिमटे सिमटे पल, अश्रु बनकर बहते पल, मेरे मन के कोने से मोह पाश में बंधे पल, बीत गए जो कल, भूलना चाह कर भी मैं नहीं भुला सकती। तुम्हारे साथ बीता एक एक क्षण प्रतिक्षण, भूलना चाह कर भी मैं नहीं भुला सकती। क्या ठीक है क्या गलत है दोनों को पता नहीं, कब सांझ है कब सहर है दोनों को खबर नहीं, कब बोले कब जुबां रहे खामोश, कब कहां बंधे हिजे चले आए पास, कहां जाए अब क्या करे दोनों को समझ नहीं। ऐसे कुछ अनजाने पल बीत गए जो कल, भूलना चाह कर भी मैं नहीं भुला सकती। तुम्हारे साथ बीता एक एक क्षण प्रतिक्षण, भूलना चाह कर भी मैं नहीं भुला सकती। तुम्हारे प्यार ने मेरी आस को छुआ, तुमने आगाह किया मैंने हया को छोड़ा, माथे पर मोती का अंकन लबों पर हल्का सा कंपन, सपना ही सही पाया तुम्हें थोड़ा थोड़ा, आज भी मेरी हथेली में, आज भी मेरी हथेली में चेहरा तेरा ही है दिखता। ऐसे खूबसूरत पल बीत गए जो कल, भूलना चाह कर भी मैं नहीं भुला सकती। तुम्हारे साथ बीता एक एक क्षण प्रतिक्षण, भूलना चाह कर भी मैं नहीं भुला सकती।
अभी आपने पौंडिचेरी से स्वर्ण ज्योति जी से उनके मन और पल के प्रति के भावों को सुना। मन चित पल यादें यदि इन सब के दर्शन की गहराई में उतरे तो बड़ा ही सूक्ष्म दर्शन उतर कर आता है। जब उन्होंने कहा कि मेरे मन के कोने मोह पाश में बंधे पल, माथे पर मोती अंकन को भला कौन संवेदनशील भूल सकता है, वे ही कुछ पल शक्ति स्रोत भी बन जाते हैं। चित्त उन्हीं पलों की परिक्रमा करता रहता है। चोट खाया मन कितना विरक्त हो जाता है, इस दर्द को इस आभास को अमेरिका से पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा जी 3 शीर्षकों के अंतर्गत अपनी अंतर पीड़ा को कहते हैं। अब मैं अनुराग शर्मा जी का आवाहन करती हूँ कि वो अपनी रचनाएं पढ़ें। उनके संदर्भ शीर्षक है रहने दो, पतझड़ और अनजाने लोग।
सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। कविता का शीर्षक है रहने दो। कुछ एक दिन और यूं ही मुझे अकेले रहने दो, न तुम कुछ कहो और न मुझे ही कुछ कहने दो। इतनी मुद्दत तक अकेले ही सब कुछ सहा है मैंने, बचे दो चार दिन ढीठ बनकर मुझे ही सहने दो, कुछ एक दिन और यूं ही मुझे अकेले रहने दो। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पतझड़। निष्ठुर ठंडी काली रातें, रिश्ते घाव रुलाती रातें, फूल पात सब बीती बातें, सूने दिन और रीती रातें, मुरझाया कुमलाया तन मन, उजड़ी सेज कटीली रातें, मिलन बिछोहा सब झूठा था, सच्चाई ये डराती रातें, फटी पुरानी यादें सीकर पैबंदों को बिछाती रातें, सूखे पत्ते नंगी शाखें पतझड़ में सताती रातें। आज की मेरी अंतिम कविता है अनजाने लोग। मेरे घर में मैं नहीं हूँ, बैठे हैं अनजाने लोग, दुख में स्वजन साथ नहीं हैं, पर हैं बिन पहचाने लोग, झूठी हमदर्दी के बहाने आए दिल को जलाने लोग, उसका जिक्र किए जाते हैं मेरे दिल की न जाने लोग। धन्यवाद।
मिलन बिछोहा सब झूठा था। अनुराग जी की रचनाएं आहत मन का संकेत कर रही हैं। जब तुम्हारे सारे कर्म अकर्म और अर्थ में अनर्थ होने लगता है तो संबंधों में निस्सारता आ ही जाती है। वैसे भी शाश्वत और सच्चा प्रेम एक बहुत बड़ी बपौती होती है जो कि निर्भाग्यशालियों को ही मिल पाती है, वरना सब एक आडंबर होता है। अनजाने लोगों में, अनजाने लोग की शीर्षक से अनुराग जी ने जो अपना दर्द कहा उसका सार यही निकल कर आता है कि सब अपने ही दुखित बिंदु पर उंगली रखकर रोते हैं और मेरे दुख को मंच बनाते सब आडंबर होते हैं। केवल और केवल आडंबर है अगर तुम्हारे साथ पास कोई सांत्वना के लिए आता है। बहुत कम 1-2% लोग होते हैं जो तुम्हारे दुख में दुखित होते हैं, वरना यदि तुम पर उपचार नहीं तो मेरी दुखती रग मत छूना, चिंता छोड़ो मैं तो हूं ना, यह विश्वाक्य कभी ना कहना, छलना मैं सब कथन रसीले, बात कही तब नयन थे गीले, रो रो पूछ उछाले हंस हंस, रीत जगत की ऐसी है ना, यदि तुम पर उपचार नहीं तो मेरी दुखती रग मत छूना, चिंता छोड़ो मैं तो हूं ना, यह विश्वाक्य कभी ना कहना। तो ये संवेदित हृदय की पीड़ा है कि जब वो संवेदना करने वाले आए हुए लोगों की असलियत को महसूस करता है तो कवि हृदय ऐसा ही कुछ कहता है। और इन लोगों का मुखौटा उतारने की शक्ति किसी वीर पराक्रमी इंसान से कम नहीं। मुखौटा उतार पाना, यथार्थ को आईना दिखा पाने का साहस किसी वीरता से कम नहीं। यथार्थ पर चढ़े मुखौटों के पीछे जीवन के सत्य को उजागर करने का साहस। शोभा महेंद्रू फरीदाबाद से, भारत की शोभा महेंद्रू फरीदाबाद से मुखौटे शीर्षक के अंतर्गत बहुत साहसपूर्ण बात कहने जा रही हैं। आज के परिवेश का विषैलापन, कई रिश्तों का मुखौटा पहनकर डसता है दोहरा व्यक्तित्व, विश्वासघाती प्रवृत्ति, रिश्तों की ओट में पवित्रता को कलंकित करते हुए लोगों से समाज की मानसिकता बहुत दूषित हो चली है। बस बहुत अविच्छिन्न है मन, सत्य है कितना बुरा, और चैन पल पल का हरे सत्य का गहरा छुरा, काट देता है कलेजा फांस हर एक सांस है, बंद फोड़े सी है टपकन, दिख रहा विश्वास है। किस पर विश्वास करें और कैसे करें, शोभा महेंद्र जी फरीदाबाद से का आह्वान करती हूँ मुखौटा उतारने के लिए। मुखौटा शीर्षक से सत्य को उजागर करती हुई शोभा महेंद्र जी।
नमस्कार। एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मुखौटे। दुनिया की बाजार में जहाँ कहीं भी जाओगे हर तरफ हर किसी को मुखौटे में ही पाओगे। दुनिया की बाजार में जहाँ कहीं भी जाओगे हर तरफ हर किसी को मुखौटे में ही पाओगे। यहाँ खुलेआम मुखौटे बिकते हैं और इन्हें पहनकर सब कितने अच्छे लगते हैं। विश्वास नहीं होता, आओ मिलवाऊं, ये तुम्हारा पुत्र है। नितांत शरीफ, आज्ञाकारी, मात्र पितृ भक्त हो गए न तृप्त। लो मैंने इसका मुखौटा उतार दिया। अरे भागती क्यों हो, ये आंखें क्यों हैं लाल, क्या दिख गया इनमें सुअर का बाल। आओ मिलो, ये तुम्हारी पत्नी है, लगती है ना अपनी, प्यारी सी भोली सी पतिव्रता नारी है, पर मुखौटे के पीछे की छवि भी कभी निहारी है। ये तुम्हारा मित्र है, परम प्रिय मित्र, गले लगता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। क्या तुम्हें पता है घर में सेंध यही लगाता है, और ये दोस्ती का मुखौटा है जो प्यार टपकाता है और दोस्तों को भरमाता है। ये दोस्ती का मुखौटा है जो प्यार टपकाता है और दोस्तों को भरमाता है। मुखौटे और भी हैं जो हम सब समय और आवश्यकता के अनुरूप पहन लेते हैं। मुखौटे और भी हैं जो हम सब समय और आवश्यकता के अनुरूप पहन लेते हैं। इनके बिना सूरत बहुत कुरूप सी लगती है। मुखौटा तुमने भी पहना है और मैंने भी, सच तुम्हें भी पता है और मुझे भी। मुखौटा तुमने भी पहना है और मैंने भी, सच तुम्हें भी पता है और मुझे भी। फिर शिकायत व्यर्थ है, जो हो रहा है और जो है उसे देखते जाओ, उसके मात्र साक्षी बन जाओ। मुखौटे में छिपाओ घृणा ईर्ष्या और बस, मीठी प्यारी बातों का लुत्फ उठाओ, मीठी प्यारी बातों का लुत्फ उठाओ। धन्यवाद।
अभी आपने सुना और अनुभव किया होगा कि विश्वासघात कैसे कैसे रूप धर कर आता है, अपना परिचय कितने कितने लुभावने रूपों में देता है और अंदर कुछ और होता है। स्नेह विश्वास दोस्ती सबसे विश्वास उठ गया है, आज तुझे नीम भी मीठी लगती है, लगता है आधुनिक परिवेश का कोई सांप डस गया है। आधुनिक परिवेश के सांप से मेरा संकेत आज के मानव से है, और ये कहा जाता है कि जब सांप काटता है तो उसकी पुष्टि करने के लिए नीम खिलाते हैं, नीम मीठी लगने लगती है। वही मेरा आशय था कहने का कि स्नेह विश्वास दोस्ती सबसे विश्वास उठ गया है, आज तुझे नीम भी मीठी लगती है, लगता है आधुनिक परिवेश का कोई सांप डस गया है। कवि सम्मेलन की अगली कड़ी श्री कमल प्रीत सिंह गाजियाबाद भारत से, श्री कमल प्रीत सिंह जी को बागडोर देती हूँ मैं, जिनकी तीन रचनाएं हैं सिलसिला, शब्द चित्र और स्वर्णिम क्षितिज। इनके घरौंदे की परिकल्पना, बचपन में गीली रेत से पैरों पर बना हुआ घरौंदा और उसी से जुड़े हुए इनके एक बहुत ही आदर्शवादी घर की परिकल्पना सुनते हैं श्री कमलप्रीत सिंह गाजियाबाद भारत से। मैं कमलप्रीत सिंह जी का आह्वान करती हूँ कि वो अपनी रचनाएं और भाव व्यक्त करें।
मेरी कविता का शीर्षक है शिल्प शिला, एक घर। बचपन में पहले पहल गीली रेत पांव पर थपथपाकर बनाया था एक घर, जो जल्द ही समय और समाज की चोट से धराशायी हो गया था। कहां जानता था कहां जानता था कि वही बचपन का खेल मेरा वर्तमान मेरा भविष्य होगा। सालों बाद पिछले वर्ष वह अन अंकुरित आकांक्षा फूट पड़ने को आतुर हुई। इस घर का प्रारंभ बाल सुलभ इच्छाओं से अलग सा हमारी पारिवारिक समस्याओं के हल का प्रतीक था। घर का आंगन बोगनविलिया की छिटकी बौछार से चहकेगा तथा रात की रानी और हरी हरी दूब पिछवाड़े का मन मोहेगी। शयन कक्षों का अपनापन और भी करीब खिसक आएगा। पाक गृह से उठती भीनी भीनी महक घर के दूरस्थ स्थानों तक बैठे हम सभी को अपने निकट खींच लेगी। बैठक के एक कोने से दूसरे कोने तक स्वागती संदेश गूंजेगा। बाहर गुलमोहर की डाली पर छितराई पत्र पंखियां और जूही की गमक अंदर तक तरोताजगी भर देंगी। जाड़े की ठिठुराती ठंड घर में प्राची दिशा से आती सूर्य रश्मियों से दूर छिटकती दिखाई देगी। गर्मियों की तीखी धूप खिड़कियों के बाहर ही चमकेगी, चमक के रह जाएगी। शीतल बयार के झोंके भीतर भीतर तक सुखी और आनंदमय जीवन का वातावरण का संचार करेंगे। बिना किसी बनावटी खूबसूरती के घर को एक सादा सुंदरता प्रदान करेंगी रद्दा दर रद्दा ईंटें। यह विचारधारा मात्र मेरा स्वप्न नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन एक ठोस यथार्थ शिल्प शिला में ढल रहा है, एक ठोस यथार्थ शिल्प शिला में ढल रहा है। धन्यवाद। मेरी अगली कविता का शीर्षक है शब्द चित्र। कोई भी इंसान जब तक कला की ओर मुड़ा या कला से जुड़ा है कलाकार है। कोई भी इंसान जब तक कला की ओर मुड़ा या कला से जुड़ा है कलाकार है। मैं भी था और तब मेरी तूलिका रंगों को कैनवस पर फैलाकर उन्हें सार्थक करने के लिए आतुर रहती। पेंसिल के रंग ग्रेड और स्ट्रोक्स कभी जाने पहचाने तो कभी अनजाने चित्रों को जन्म देते। अमूर्त चित्रण आत्म अभिव्यक्ति तो होता लेकिन सौंदर्य के अतिरिक्त किसी के लिए कुछ ठीक समझ पाना कठिन सा होता। इसीलिए मैंने माध्यम को एक मोड़ दिया है और अब मैं शब्द चित्र उधेड़ता बुनता और कहता हूं, अपने आप को आपके और निकट पहुंचाने की चेष्टा में रहता हूं। और अगली कविता है स्वर्णिम क्षितिज। सूर्यास्त से पहले की स्वर्णिम संध्या दिन भर ओज और तेज को बिखेर कर अपने अंत को चरम तक निखार कर सूर्योदय में मूलभूत साम्यता की समीकरण खोज रही है। ढलते सूर्य का समस्त संदेश सुनहलेपन में ढल गया है और जानता हूं मैं कि हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती अपने अस्तित्व के समापन का रोना नहीं रोती। उससे परावर्तित प्रत्येक किरण कंचन नहीं धोती। आखिर प्रातः और साय में अंतर तो है ही। आखिर प्रातः और साय में अंतर तो है ही। किसी कंचन और इसके मंचन में अंतर तो है ही। एक उदय का प्रतीक है तो दूसरा अस्त का आभास। एक उदय का प्रतीक है तो दूसरा अस्त का आभास। एक जीवन की उन्मुक्त प्रक्रिया है तो दूसरा एक पस्त प्रयास। परंतु इस प्रयास में जो सौंदर्य निहित है वही आने वाले कल का स्वर्णिम क्षितिज है। धन्यवाद। और अंत में एक गजल। सरोकार छूट जाएं, नजरें बदलती हैं, रास्ते बदल गए तो सूरतें बदलती हैं। सरोकार छूट जाएं, नजरें बदलती हैं, रास्ते बदल जाएं तो सूरतें बदलती हैं। मुलाकात फिर हो जाए शायद किसी मोड़ पर, मुलाकात फिर हो जाए शायद किसी मोड़ पर, तमन्नाएं आज तो बदलने को मचलती हैं। हट गई जो बंदिशें, खुल गए हैं रास्ते। हट गई जो बंदिशें, खुल गए हैं रास्ते। जरूरतें तो आज सभी किसी और रुख फिसलती हैं। दिन हवाएं हो गए और बंधनों के रास्ते, दिन हवाएं हो गए और बंधनों के रास्ते। जज्बात की आंधी कहीं मोम सी पिघलती है। देख कर पहचान पाए ये ताब नहीं रही उनमें, देख कर पहचान पाए ये ताब नहीं रही उनमें। पहचान कर भी देख जाएं मजबूरियां बदलती हैं। सरोकार छूट जाएं, नजरें बदलती हैं, रास्ते बदल जाएं तो सूरतें बदलती हैं। धन्यवाद।
कमलप्रीत जी का यथार्थ और आदर्शों से युक्त घर ही शायद सबका सपना है। स्वर्णिम क्षितिज में उनके विचार, सूर्य अपने अंत को चरम में निखार कर सूर्योदय का समीकरण खोज रही है। एक उदय का प्रतीक है तो दूसरा अस्त का आभास। एक जीवन की उन्मुक्त आभास है तो दूसरा पस्त प्रयास है। अस्ताचल में ही कल का सूर्य छुपा है, दीपक देता उजियारा पर काजल उद्गम स्रोत यही। मुस्कानों से सर्जित होकर ही तो आंसू धार बही। जन्मों के जय घोष गूंज में मरण जन्म ले लेता है। मन बौराया समझ न पाए कैसे कब क्या होता है। प्रात रश्मियों के आंचल से काली रात उपजती है और पूनम के पीछे पीछे ही सदा अमावस रहती है। सुख के आंचल के नीचे ही दुख का बादल चलता है। पिए मित्रता का पै छक्कर रिपु का विषधर पलता है। श्री यश सुख ऐश्वर्य विपुलता में गौतम अरिहंत हुए और अतिशय आसक्ति में से ही निरासक्त सब संत हुए। बासंती मनहर उपवन में ही पतझर झड़ता है। आकर्षण के किसी बिंदु से विपुल विकर्षण बनता है। डॉक्टर श्याम भारत से, रोहतक शहर, भारत के रोहतक शहर से डॉक्टर श्याम सखा श्याम हमें व्यवहारिक धरातल पर लेकर आते हैं और बताते हैं कि गलतियां करता कौन नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, उनसे शिक्षा लेना है, यही सिखाया गया है। गलतियां करता कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं, अतः स्वाभाविक मानवीय मनोभावों
की टोह लेता हुआ डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी का काव्यानंद लेते हैं। मैं श्याम जी का आवाहन करती हूँ, वो अपने विचारों को व्यक्त करें।
दोस्तों, गलतियां से सच दो गजलें हैं। करते तो हैं सभी गलतियां, ढूंढते बस मेरी गलती। करते तो हैं सभी गलतियां, ढूंढते बस मेरी गलतियां, सामने आएंगी एक दिन दोस्तों आपकी गलतियां। सामने आएंगी एक दिन दोस्तों आपकी गलतियां, तलखियां ही मुझे दे गईं, थी बड़ी मतलबी गलतियां, लूट कर ले गई चैन ही, ये मरी दिल जली गलतियां। लड़कियां हां जवां जब हुई, हो चली वन चली गलतियां। खौफ औलाद ने दी छुड़ा, आपसे श्याम जी गलतियां, करते तो हैं सभी गलतियां, ढूंढते बस मेरी गलतियां। और गलतियों पर दूसरी है इसी बहर में, लेकिन एक नुक्ते का फर्क है, देखिएगा। हर तरफ हर कहीं गलतियां, हर तरफ हैं खड़ी गलतियां। ये असर है सजा का हुआ, रोज बढ़ती गई गलतियां। आदमी तो था मैं काम का, आपने ढूंढ ली गलतियां। खूब है आपका ये हुनर, नाम मेरे लिखी गलतियां, हर कदम हर दिवस उम्र भर साथ मेरे रही गलतियां। ना समझ मैं नहीं जब रहा, मुझको अपनी लगी गलतियां। भागने जब लगे श्याम जी, सामने आ खड़ी गलतियां। कौन करता नहीं गलतियां, हर तरफ हैं खड़ी गलतियां, कौन करता नहीं गलतियां।
अभी आपने डॉक्टर श्याम से गलतियां शीर्षक से उनकी एक बहुत अच्छी गजल सुनी, और जो जीवन के एक व्यवहारिक पक्ष को उभार कर सामने ला रही थी कि गलतियां सभी करते हैं और दूसरों पर उंगलियां उठाना आसान है, पर लोग ये भूल जाते हैं कि एक उंगली उठाते ही चार उंगली अपनी ओर होती हैं। गलतियों से शिक्षा लेते हुए यही पक्ष उन्होंने उजागर किया है। अब हम श्री मनोज मेहता जी को बुलाते हैं, जो भारत से हैं, देहली प्रांत से। श्री मनोज मेहता जी अपनी कोमल भावनाओं को प्रकृति के उपादानों से जोड़कर अपने प्रेम को संकीर्ण होने से बचाने का प्रयत्न करते हैं, और उनकी भावनाएं जो हैं वो प्रकृति के उपादानों से जुड़ी हुई। मैं उनका आह्वान करती हूँ, श्री मनोज मेहता जी दिल्ली से, वो अपनी रचना पढ़ें।
मैं तुम्हें देख नहीं सकता जबकि तुम मुझे चारों तरफ से घेरे हो। मैं एक पुराने मकान की तरह हूं जहां बरसों बाद कोई रहने आया है, कुछ नए फूल, सफेद बादल और उजली धूप लिए। तुम्हारे साथ आए हैं कई अदृश्य जन्मांतर, आशा का एक महाद्वीप, आराधना के लिए जलता हुआ एक दीप। शायद प्रेम में यही होता है, सारा ब्रह्मांड यूं ही मिल जाता है। मैं अपने रग रग में महसूस कर सकता हूं तुम्हें, छू सकता हूं, तुम्हारे साथ भीग सकता हूं, जाग सकता हूं, सो सकता हूं, तुम निश्चल आकाश हो, एक अबोध बच्चे की मासूम प्रार्थना हो, तुम धरती हो, बारिश हो, हरियाली हो, तुम मुझे भूल न जाना, एक अकस्मात अतिथि की तरह जो संयोगवश मेरे दरवाजे पे आ गया।
अभी आपने श्री मनोज मेहता जी से उनके विचार सुने। उदात्त प्रेम के माध्यम से ब्रह्मांड तक विचरण का विश्वास एक उत्कट प्रेम का प्रतीक है, जो पूजा की तरह ही पवित्र होता है। प्रेम को पूजा तक ले जाने का मेहता जी का विचार प्रणम में है। हमारे भारतीय दर्शन में एक सार्वभौम प्रार्थना है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। कौन सा असत जिससे सत्य की ओर जाना है, जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम अपना मान बैठे हो, उसे तुम छोड़ने या ग्रहण करने वाले कौन होते हो। संसार को अपना मानना ही असत है, इसी असत से सत की ओर जाने की प्रार्थना ही असतो मा सद्गमय है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार किस तम का नाम है, कोई कामांध है तो कोई मदांध है, कोई रूपांध है तो कोई धनांध है। इन विचारों के तम से दूर ले जाने की प्रार्थना ही तमसो मा ज्योतिर्गमय है, मृत्यु और मा अमृतम गमय, जिससे मेरा मरना ना छूटे उसे लेकर मैं क्या करूं। तन बदलने से मरण नहीं छूटते, बार बार तन बदलने से भी क्या होगा, जहां मेरा मरना छूटे तन बदलना छूटे, ऐसे अमर तत्व की ओर ले चलो, यही मेरी प्रार्थना का मूल है, मृत्यु और मा अमृतम गमय। इन्हीं विचारों के साथ कवि सम्मेलन के समापन की ओर चलते हैं और आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। इन सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा पुनि पुनि नमन, धन्यवाद।